आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का विकास। 17वीं सदी के मध्य तक उदारवाद परंपरागत रूप में प्रचलित रहा, लेकिन इसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। 1730 तक अधिकांश उदारवादी लोकतंत्र और आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन इस समय तक परिस्थितियां कुछ तो परिवर्तित हो गई थीं और कुछ तेजी से परिवर्तित होती जा रही थी। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने के परिणाम निर्धन श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही अधिक बुरे हुए थे, और यह बहुत अधिक जरूरी हो गया था कि इन निर्धन व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह थी कि ब्रिटेन उदारवाद का घर रहा था और ब्रिटेन में मताधिकार क्रमशः व्यापक होने जाने के कारण किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह जरूरी हो गया था कि राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए निम्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इन नवीन उदारवादियों द्वारा यह कहा गया कि निर्धन, साधनहीन और अशिक्षित जनता अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकती और धनी वर्ग के शोषण का उसका प्रयत्न करती है, अतः जनता के हित के सभी संभव कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, मद्य निषेध, बच्चों तथा स्त्रियों के श्रम के अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का समर्थन आरंभ किया। इसके बाद उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि राज्य द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था के पेंशन योजना तथा बेकारी और बीमारी बीमा योजना को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार 17वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्य क्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्य क्षेत्र में कार्मिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप थॉमस हिल ग्रीन के साथ आरंभ हुआ और इंग्लैंड का उदारवादी दल आज तक उदारवाद के रूप में इसमें विश्वास करता है। उदारवाद का यह नवीन रूप पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद के ही अधिक समीप है। आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी थॉमस हिल ग्रीन। ग्रीन को आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। उसके द्वारा राज्य के अहस्तक्षेप पर बल देने वाले परंपरागत उदारवाद और राज्य को दैवीय स्तर प्रदान करने वाले हीगलवादी आदर्शवाद दोनों को ही अस्वीकार करते हुए औद्योगिक क्रांति में उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए जनतंत्रात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया है। ग्रीन आदर्शवादी होने के साथ साथ उदारवादी इस दृष्टि से है कि उसने राज्य को कभी भी एक साध्य नहीं माना है। ग्रीन के मतानुसार राज्य एक साध्य की प्राप्ति का मात्र साधन नहीं है और साध्य है। राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण नैतिक विकास। ग्रीन बार बार इस बात पर बल देता है कि संस्थाओं का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए होता है, व्यक्तियों का अस्तित्व संस्थाओं के लिए नहीं। ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा भी हीगल से भिन्न है और उसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को ही सर्वप्रिय महत्व प्रदान किया गया है। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का भी विरोध कर सकता है। ग्रीन का यह विचार उदारवादी धारणा के ही अनुरूप है। इस प्रकार ग्रीन एक उदारवादी है, लेकिन वह वैसा परंपरागत उदारवादी विचारक नहीं जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसके प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध करे। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन मानता है। परंपरागत उदारवादियों मिल द्वार आदि का विचार है कि राज्य का कार्य केवल रक्षा करना है, लेकिन ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। राज्य यद्यपि व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन उसके द्वारा नैतिक विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर कर उनके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाई जा सकती है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा अज्ञान, शराबखोरी और भिकमंगापन आदि बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो श्रमिक वर्ग के हितों की अधिकाधिक रक्षा करे और समस्त जनता को स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें। ग्रीन ने राज्य के द्वारा सद्जीवन के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने की जो बात कही है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसने 20वीं सदी के जल कल्याणकारी राज्य की नींव डाली। उसने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ग्रीन की उपलब्धि यह थी कि उसने उदारवाद को एक नया धार्मिक विश्वास प्रदान किया और उसे बदलती हुई परिस्थितियों में जनहित और जनतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल बनाया। उदारवाद को यह नवीन रूप प्रदान कर ग्रीन ने सर्वाधिकारवाद के विरुद्ध उदारवाद की रक्षा करने का ही कार्य किया है। उदारवाद की आलोचना। परंपरागत उदारवाद की तो लगभग उसी प्रकार से आलोचना की जाती है जिस प्रकार से व्यक्तिवाद की आलोचना की गई है, क्योंकि परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद की ही भांति आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उदारवाद के कुछ और आलोचनाएं की गई हैं। उदारवाद के इन आलोचकों में ब्रिटिश संसद के अनुदारवादी सदस्य एडमंड ब्रक का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। एडमंड ब्रक के अनुसार उदारवाद की प्रथम और सबसे गंभीर रूटी यह है कि इसके द्वारा इतिहास और परंपराओं की उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। परंपराओं के पीछे पीढ़ियों का अनुभव निहित होता है और अतीत से एकदम और पूर्ण संबंध तोड़ लेना ना तो संभव है और ना ही उचित। आज का जीवन बहुत कुछ सीमा तक भूतकालीन परिस्थितियों का ही परिणाम है। उदारवाद की आलोचना करते हुए यह भी कहा जाता है कि इस समर दर्शन में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है जो अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटनाक्रम के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया जाता है। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संगठन और समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य ना तो किसी समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है और ना ही वह कोई व्यवसायिक ढंग की साझेदारी है जिसे इच्छा अनुसार भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एक शाश्वत संस्था है। आदर्शवादी और फासीवादी विचारक भी उदारवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि उदारवाद में व्यक्ति को जिस प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात की गई है, वह तो मानवीय जीवन को एक प्रकार की पूर्ण अराजकता में परिणित कर देगी। समस्त समाज के विकास और सामूहिक जीवन की पूर्णता के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित करना नितांत आवश्यक हो जाता है। मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा भी उदारवाद की आलोचना की गई है, क्योंकि उनके अनुसार उदारवाद पूंजीपति वर्ग के हितों का पोषण करती है और पूंजीवाद का सहायक दर्शन है। उदारवाद का प्रभाव और महत्व। आज उदारवादी दर्शन की आलोचना की जा सकती है, लेकिन यह एक तथ्य है कि 17वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में उदारवादी दर्शन सबसे अधिक प्रभावशाली था और इस दर्शन ने राष्ट्रों के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसने यूरोप के विभिन्न राज्यों तथा अमेरिका के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों के निवासियों ने आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इसके द्वारा मुक्त व्यापार पर बल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के समीप आए हैं और एक विश्व बाजार का निर्माण हुआ है। इसने धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक कर धर्मनिरपेक्षता का मार्ग प्रशस्त किया है, जो आज के प्रगतिशील युग का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसने विशेषाधिकारों पर आधारित पुरानी व्यवस्था का अंत कर स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र का समर्थन किया है। आज की संसदीय संस्थाएं और वयस्क मताधिकार का सिद्धांत इस उदारवादी दर्शन की ही देन है। इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन कर विभिन्न जातियों की राष्ट्रीयता का स्वाधीनता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदारवादी की एक विशेषता यह है कि इसके द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सदैव ही अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया गया है। यदि परंपरागत उदारवादी पूंजीवाद का सहायक दर्शन रहा है, तो आज का उदारवाद समाजवाद के समीप है और इस प्रकार उदारवाद को लोकतंत्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और आर्थिक प्रगति का दर्शन कहा जा सकता है। पश्चिम देशों पर उदारवाद के प्रभाव के संबंध में प्रोफेसर लास्की लिखते हैं कि पिछले लगभग 100 वर्षों की अमेरिकी सभ्यता को उदारवादी दर्शन की ही पुनः करना अनुचित ना होगा।